नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र के दूसरे चरण की आज तीसरी बैठक है। सदन की कार्यवाही के दौरान कई शासकीय व विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में पक्ष और विपक्ष में विभिन्न मुद्दों पर लगातार नोकझोंक देखने को मिल रही है। सदन में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा व पारण होगा। इसके अलावा आज सत्र में मौखिक उत्तर के लिए विभिन्न सदस्यों के कुल 31 प्रश्न रखे गए हैं। मुख्यतः प्रश्न स्वास्थ्य सेवा, विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने, प्रधानमंत्री आवास व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विशेष राहत पैकेज, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, 4 लेन, BPL सर्वे, विधायक प्राथमिकता, जैविक खेती, खिलाड़ियों और जल शक्ति विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल 21 मार्च को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि पीएम श्री स्कूल योजना के तहत हिमाचल के 199 स्कूलों का चयन किया गया है। राज्यसभा सांसद इंदुबाला गोस्वामी द्वारा संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि इन स्कूलों में केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी व इंटरनेट सहित अति आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन के लिए देश भर में 14,500 स्कूलों का चयन किया जाना है, जिससे अभी तक 33 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 13,091 स्कूल चयनित किए जा चुके हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश की ऊंची चोटियों पर पिछले 3 दिनों से हिमपात, जबकि मैदानी इलाकों में वर्षा का क्रम लगातार जारी है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट के चलते जहां ठंड बढ़ गई है, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वर्षा और हिमपात के चलते प्रदेश के कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कुल्लू शहर के मठ इलाके से हो रहे भूस्खलन के चलते इनर अखाड़ा बाजार के आधा दर्जन मकानों को प्रशासन ने एहतियात के तौर पर खाली करवा दिया है। अटल टनल रोहतांग के आसपास करीब 3 फीट तक हिमपात हो चुका है और ये टनल फिलहाल सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद है। इधर चंबा जिले में बर्फबारी और वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के भरमौर और तीसा क्षेत्र के कुछ इलाके में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विभाग के कर्मचारी लगातार कार्य कर रहे हैं। लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी के चलते 134 सड़कों के अलावा 193 बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। किन्नौर जिले के छितकुल में अभी तक 1 फुट ताजा बर्फबारी हो चुकी है। जिले में बिजली व्यवस्था पर भी असर पड़ा है और किसान बागवानों को अपने मवेशियों के चारे की चिंता भी सताने लगी है। हालांकि कृषि क्षेत्र के लिए हिमपात और वर्षा लाभकारी मानी जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात, निचले क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने, वर्षा और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। प्रदेश के सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु कतारबद्ध होकर माता रानी के चरणों में नतमस्तक होकर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप विकास की नई शुरुआत और समृद्धि को दर्शाता है। इस बीच सिरमौर जिले के नाहन के समीप उत्तरी भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया माता बालासुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में चैत्र नवरात्र के दौरान पहली बार कल शिव गौरा महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। महाआरती में पहुंचे SDM व संयुक्त आयुक्त त्रिलोकपुर मंदिर न्यास राजीव सांख्यान ने बताया कि अष्टमी पर होने वाली आरती प्रक्रिया में और बदलाव कर इसे अधिक बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे।
लक्ष्य में जो है शिवालय सरोवर में महाआरती, जिसमें भगवान भोले शंकर और मां गौरा की आरती की गई और श्रद्धालुओं में खूब जोश जो है उस आरती को लेकर देखा गया। कुछ कमियां जो इसमें नहीं है, हम प्रयास करेंगे कि अष्टमी की जो अगली आरती हमारी 26 मार्च 2026 को होगी, उसमें इन कमियों को दूर किया जाए और भव्यता जो है इस आरती में और प्रदान की जाए।
वर्ष 2027 में 2 चरणों में होने वाली जनगणना को लेकर देश सहित प्रदेश भर में कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहली बार डिजिटल माध्यम से होने वाली इस जनगणना के लिए स्मार्टफोन आधारित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा, जिससे डेटा का संकलन और प्रसंस्करण पहले की तुलना में तेज और सटीक तरीके से किया जाएगा। चंबा जिले में भी जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण व आवासों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।